हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर जल्दी ही हवेली के अंदर आ गए थे, और जैसे ही उन्होंने करिश्मा और अमरेंद्र को किसी बात पर बहस करते हुए देखा, उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा। तब तारा ने करिश्मा का हाथ पकड़कर कहा, क्या हुआ मॉम, आप कुछ परेशान लग रही हैं? अमरेंद्र ने कहा, तारा बेटी, अच्छा हुआ तुम आ गई, बैठो, अब तुम ही फैसला करोगी आगे क्या करना चाहिए। करिश्मा ने अमन की ओर देखते हुए कहा, अमन, तू जानता है तेरे पिता क्या कह रहे हैं? तेरे पिता क्या करने की बात कर रहे हैं? तेरे पिता का दिमाग खराब हो गया है। करिश्मा के इस तरह कहने पर अमन हैरानी से अपनी माँ को देखने लगा। आज तक उसकी माँ ने उसे इस तरह से बात नहीं की थी। करिश्मा हमेशा सभी से बड़े ही विनम्रता से बात करती थी, उनकी बातों में हमेशा नरमी रहती थी। आज करिश्मा को इतना चिड़चिड़ा देखकर अमन हैरान था। अमन थोड़ा आगे बढ़ा और करिश्मा का हाथ पकड़कर बोला, मॉम, क्या हुआ है, आप मुझे बताइए, क्या बात है, आप क्यों परेशान लग रही हैं? मैं आपको परेशानी में नहीं देख सकता हूँ। अमन के ये कहते ही करिश्मा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, क्या बताऊँ, एक ऐसा राज है जिसके बारे में तुझे नहीं पता है, और मुझे लगता है कि तुझे अब पता होना चाहिए। पहले मुझे थोड़ा शक था, लेकिन आज मेरा शक यकीन में बदल चुका है। अमन बीच में अपनी माँ को रोकते हुए बोला, मॉम, ऐसा क्या बात है, प्लीज़ मुझे खुलकर बताइए, बात क्या है? करिश्मा ने कहा, तुझे अमित याद है? जैसे ही करिश्मा ने अमित का नाम लिया, तारा पूरी तरह से हैरान हो गई और सवालिया निगाहों से करिश्मा की ओर देखने लगी। मॉम, आप क्या कह रही हैं? अमित सर तो अमन सर के ऑफिस का सारा काम संभालते हैं, साथ ही अमन के बचपन के दोस्त भी हैं, वो भला अमित को क्यों नहीं जानेंगे? करिश्मा ने कहा, हाँ हाँ, मैं जानती हूँ ये बात, मुझे पता है, लेकिन इससे अलग एक और बात भी है, वो मैं आज तुम लोगों को बताना चाहती हूँ। अमन अब काफ़ी हैरान था और अपने पिता की ओर देखने लगा। उसके पिता बिल्कुल खामोश थे और दूसरी ओर मुँह करके खड़े हुए थे। अमन ने करिश्मा से कहा, मॉम, क्या बात है, प्लीज़ बताइए, क्या हुआ है अमित को, और इन सब बातों में अमित बीच में कहाँ से आ गया? करिश्मा जोरों से चीख पड़ी और बोली, अमित बीच में नहीं आया है, तेरा बाप उसे लेकर आया है। तू जानता है अमित कौन है? अमित तेरा सौतेला भाई है। तेरे पिता ने जो काली शक्तियों की औरत के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाया था, उससे पैदा हुआ है वो अमित। अमन और तारा ने ये सुनते ही हैरानी से एक दूसरे का मुंह देख लिया। तारा तो पूरी तरह से स्तब्ध थी। वो जानती थी कि अमित काली शक्तियों का मालिक है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अमित का अमन के साथ इस तरह का कोई रिश्ता होगा, वो भी भाई का। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हकलाते हुए उसने करिश्मा से कहा, लेकिन मॉम, ऐसा कैसे हो सकता है? पापा जी तो एक जिन है, और काली शक्तियों की औरत के साथ अगर उनका रिश्ता था तो उनसे कोई जिन या कोई काली शक्ति पैदा होती, लेकिन अमित सर तो। तारा की बात अधूरी रह गई। अमन ने उसकी बात पूरी की, लेकिन मॉम, अमित तो एक इंसान है, वो भला मेरा सौतेला भाई कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो बचपन से मेरे साथ है, मैं बचपन से उसे जानता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं आज तक उसके घर नहीं गया, लेकिन वो मुझे हर बार बुलाता है। इतना ही नहीं, वो शादी भी करने वाला है, और कितनी बार उसने मुझे शादी के लिए भी बुलाया है, लेकिन मॉम, तारा मेरे साथ नहीं थी तो मैं उससे मिलने भी नहीं जा पाया। इतना ही नहीं, वो स्कूल में भी मेरे साथ था, और साथ ही साथ अब वो मेरे ऑफिस में भी काम करता है, साथ साथ हमने पढ़ाई भी की है। आप क्या कह रही हैं? मैं आपकी कोई भी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। अमन के ये कहते ही करिश्मा अचानक रोने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, मैं जो कुछ कह रही हूँ मैं सच कह रही हूँ। मैं तो जानती थी कि तेरे पिता की गलती की वजह से एक औलाद पैदा हुई थी, लेकिन वो औलाद अमित ही है, ये मुझे आज पता चला है। अमन अब बहुत हैरान था। उसकी हालत अजीब सी हो गई थी। जिस बचपन के दोस्त को वो हमेशा अपना दोस्त मानता आया था, वो उसका भाई निकला। अमन को कोई आइडिया नहीं था। तभी अमरेंद्र अमन के पास आए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, मैं जानता हूँ बेटा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर बेटा प्लीज़, मैं अपनी गलती का थोड़ा सा पश्चाताप करना चाहता हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है और तुम्हारे भाई के साथ बुरा किया है, लेकिन अब अमित मेरा बेटा है, लेकिन मैं अब सिर्फ उसकी शादी अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ बंगले में आकर रहे, और बस एक हफ्ते की ही तो बात है। एक हफ्ते में मेहंदी, हल्दी और शादी के बाद हम उसे वहाँ से भेज देंगे, लेकिन प्लीज़, मैं अपने बाप होने का फ़र्ज़ निभाना चाहता हूँ। तुम्हारी और तारा बेटी की शादी मैंने नहीं देखी, लेकिन अमित की शादी मैं देखना चाहता हूँ। अमरेंद्र के इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल करने पर अमन का रंग उड़ गया। वो सोचने लगा कि उसके एक भाई की मौत हो चुकी है और वो बचपन से बड़ा हुआ है बाप के बिना, उसे बाप का प्यार नहीं मिला है, लेकिन अब ये अमित वाला सीन अमन का सरदर्द बनने लगा था। वो कुछ नहीं कह पा रहा था। गुस्से से वो वहां से हवेली के एक कमरे में चला गया। वहीं तारा करिश्मा का हाथ पकड़कर बैठ गई और बोली, मॉम, आप क्या चाहती हैं? आप क्यों परेशान हो रही हैं? करिश्मा ने तारा की ओर देखते हुए कहा, बेटा, मैं क्या बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मेरी हालत तो इस वक्त ऐसी है, कोई भी मेरी हालत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता है मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रही हूं। ये कहकर करिश्मा भी वहां से चली गई। तभी तारा की नज़र सोनल पर गई। सोनल इशारे से तारा को बुला रही थी, क्योंकि वो गायब होकर वहां की सारी बातें सुन चुकी थी। अमरेंद्र तारा की ओर देखते हुए बोले, बेटा, तुम जाकर अमन को समझाओ, करिश्मा जी से मैं बात करता हूँ।
प्लीज बेटा, बस मेरी ये ख्वाहिश है, तुम किसी भी तरह से अमन को अमित के लिए मना लो। ये कहकर अमरिंदर वहां से जाने लगे। तारा अमन के पास न जाकर सोनल के पास चली गई और बोली, क्या हुआ, तू मुझे क्यों बुला रही है? तू जानती है ना घर में क्या क्या हो रहा है और कैसी बातें चल रही हैं? सोनल ने तारा की ओर देखते हुए कहा, तारा, ये अमित आखिरकार करना क्या चाह रहा है? मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो कितना खतरनाक है। इतना ही नहीं, वो बदसूरत बुढ़िया भी उसके साथ रहती है। और फिर वो किससे शादी करना चाह रहा है और वो शादी का नाटक क्यों कर रहा है? तारा सोनल की बात सुनने लगी और बोली, मैं बहुत पहले ही अमित का सारा सच अमन के सामने लाना चाहती थी, लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि अमित उसका दोस्त ही नहीं है बल्कि उसका सौतेला भाई भी है। लेकिन अब अगर ये सच मुझे पता चल ही गया है तो मुझे बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा और साथ ही साथ उसके उस घर में आने की इजाजत दिलानी होगी, क्योंकि अगर वो आंखों के सामने रहेगा तो मैं आसानी से उसका असली चेहरा सबके सामने ला सकती हूँ और जो इन लोगों को गलत फहमी है कि अमित एक मामूली इंसान है, उनकी ये गलत फहमी भी दूर हो जाएगी। सोनल चुप हो गई और बोली, तू फिक्र मत कर, हम कुछ ना कुछ दोनों मिलकर ऐसा आइडिया निकालेंगे कि अमित खुद पर खुद अपने गुनाह सबके सामने कह देगा। उसके बाद अमन और ये तुम्हारे ससुर अमरेंद्र जी खुद उसे धक्के मारकर वहां से निकाल देंगे। सोनल की बात सुनकर तारा ने अपनी गर्दन हां में हिला दी और जल्दी ही अमन के कमरे में चली गई।
अमन बहुत गुस्से में था। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी कसकर बंद कर रखी थी और कमरे में बनी बड़ी खिड़की के पास खड़ा होकर आसमान की ओर देख रहा था, जहां कई सारे चांद तारे टिमटिमा रहे थे। तारा सीधा अमन के पास गई, उसे पीछे से गले लगा लिया और अपना सर अमन की कमर पर रखते हुए बोली, क्या हुआ है, परेशान क्यों हो? इतने दिन बाद हम मिले हैं और मैं आपको इस तरह से परेशान नहीं देख सकती हूँ। तारा के इस तरह प्यार से कहने पर अमन ने तुरंत तारा के हाथ पकड़कर उसे अपनी कमर के बजाय सीने से लगा लिया और काफी देर तक गले लगाए रखा। अपने दिल को सुकून पहुंचाते हुए बोला, कहाँ चली गई थी तुम? तुम जानती हो ना, तुम मेरे दिल की धड़कन हो, तुम मेरे दिल का सुकून हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। आइंदा कभी मुझे बिना बताए कहीं मत जाना। मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता हूँ। अमन की बातें सुनकर तारा का दिल खुश हो गया और हल्का हल्का दर्द भी उसे अपने दिल में महसूस हुआ। अमन ने कहा, आखिरकार तुम ठीक कहा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इस दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं था जहाँ मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा। तारा ने हल्की सी आंखें बंद करके अमन की ओर देखते हुए कहा, मैं खुद नहीं जानती मैं कहाँ थी। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी अंधेरी दुनिया में कैद थी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर अचानक से जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं अपने आप को आपकी इस हवेली में पाई। अमन सोचने लगा कि जरूर परमेश्वर ने ही तारा को कैद करके रखा होगा, जब तक कि मैं अपने तीनों जिन्नों का चैलेंज, उन्हें सजा देने का चैलेंज पूरा नहीं कर लेता। ये सोचते हुए अमन ने अब तारा से इस बारे में कुछ भी सवाल नहीं किया। अब तारा बताती भी तो अमन को क्या बताती कि वो परीलोक में थी या परीलोक की रानी है या वो एक मकसद के लिए यहाँ आई है। जैसे ही उसका मकसद पूरा होगा वो यहाँ से चली जाएगी। तारा भूलकर भी ये सारी बातें अमन को नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर अमन के सामने उसका सच आ गया तो अमन कभी भी उसे वापस परीलोक नहीं जाने देगा। और हो सकता है कि अमन के प्यार के आगे वो खुद परीलोक ना जाना चाहे, लेकिन उसे अपने बच्चों के साथ हर हाल में परीलोक जाना था और उसे उस राक्षस का अंत करना था। तारा ने अमन को गले लगाए हुए समझाना शुरू कर दिया कि एक हफ्ते की ही तो बात है और अमित उसका बचपन का दोस्त है, और अगर आपके पिताजी और उस काली शक्तियों की औरत के साथ उनका जिस्मानी रिश्ता था तो इसमें अमित की तो कोई गलती नहीं है। वो तो एक बच्चा ही था और वो शुरू से ही अकेला ही पला बड़ा है, और उसे किसने पाला है किसने नहीं आपने इस बारे में भी जानने की कोशिश नहीं की। और वो बचपन से आपके साथ है, उसने पढ़ाई लिखाई की है आपके साथ, आपके करियर में हर एक मुसीबत में दुख में वो आपके साथ रहा है। क्या उसके बर्ताव से आपको एक बार भी लगा है कि वो कोई और नहीं आपका सौतेला भाई है? अमन ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। वो कहने लगा, मुझे इसी बात का तो अफसोस है। अमित शुरू से ही मेरे साथ रहा है, पढ़ाई भी उसने मेरे साथ ही की है, और इसीलिए वो मेरे बचपन का बहुत अच्छा दोस्त था, हमेशा मेरे हर काम में मदद करता था, इसीलिए मैंने उसे अपनी कंपनी का मैनेजर बनाया है। लेकिन मैंने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसके पिता कौन थे, और ना ही उसे शायद इस बात के बारे में पता है। तारा जानबूझकर अमन के सामने ऐसी बातें कह रही थी ताकि अमन उसे एक हफ्ते के लिए अपने घर पर रखने के लिए मान जाए और फिर तारा मौका देखकर उसका असली चेहरा अमन को दिखा सके। क्या अमन काली शक्तियों के मालिक अमित को अपने बंगले में रहने की इजाजत देगा? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।